श्रील प्रभुपादि गैगोर प्रेमान जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राम जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय जसदानंदन जनरंजन जसदानंदन व्रज 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 जनरंजन जमुना तीर Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಶ್ರೀಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಜಯಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿಪುರಾಗಿದೆ ಕಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ಅನಂತಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಗಿರಿಧರಿ ಭಗವಾನಿಗೆ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಸುಭದ್ರಾಜಿಗೆ ಸಮದೇಶ ಭಕ್ತ ಬೃಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ನಿತೈ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ಸತ ಜಯಾಂ ಮುದೀರಯೇ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇ ಸುಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸ್ಕಂದನ ಶ್ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹೃದಾಶಯ ಗುರು ಹರ ಕ್ಷಿಪನ ಕರುಣಾ ಹೃದಾಶಯ ಗುರು ಭಾರ ಕ್ಷಿಪನ ಕರುಣಾ ಅಂತ ಸಮಸ್ತಿ ಕಾಲಿನ ವಿಧಿ ಉಪಚಂಬ ವಿಜಯೇ ಜಯಮಿ ಘೋಷ್ಯ ದೃಷ್ಟ್ವಾಧೋಯ ವಿಜಯ ಜಯಮಿ ಘೋಷ್ಯ ಪ್ರಖ್ಯೋಪಾಯ ಪರಂ ಸಮಾಗತ ಸ್ವಧಾಮ ಪ್ರಖ್ಯಾಶಯ ಗುರು ಭರಕ್ಯಪಯನ ಕರುಣಾ ಅಂತ ಸಮುಖ್ಯ ಕಾಲಿನ ಯುಧಿ ಭುಭೋಚ್ಯಮ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಧೋಯ ವಿಜಯ ಜಯಮಾದಿ ಘೋಷ್ಯ ಪ್ರಖ್ಯೋತ ವಾಯ ಚ ಪರಂ ಸಮಾಗತೋಧಾಮ ಪ್ರಖ್ಯಾಶಯ ಗುರು ಭಾರಂ ಕ್ಷಿಪಯನ್ ಕರುಣಾ ಅಂತ ಸಮುಖ್ಯ ಕಾಲಿನ ದುಧಿ ಭುವಸ್ತಂ ಸಂಬ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಧೋಯ ವಿಜಯ ಜಯಮಾದಿ ಘೋಷ್ಯ ಪ್ರತ್ಯುದವಾಯ ಚ ಪರಂ ಸಮಾಗತ ಸುಧಾಮ
ದೃಷ್ಟಯಾ ವಿಜಯೇ
कृष्णदवाय च परं समागत सुधाम। का शब्दार्थ ऐसे हैं, पृथ्वीम पृथ्वी पर स वो कृष्ण ये निसंदेह गुरु भारम बहुत बड़ा भार खेपयन पूरी तरह हटाने में करुणा कुरुवंशियों का अंत समुद्धकालीना भाइयों में मनमुटाव वाला शत्रुता उत्पन्न करके योधी कुरुक्षेत्र के युद्ध में भूपचंब सारे असुर राजा दृष्ट्वा अपने दृष्टिपात से विधूय अनेक पाप कर्मों को शुद्ध करके विजये विजय में जयम विजय उद्घोष्य घोषणा करके अर्जुन की विजय प्रोच्य उपदेश देकर उद्धव को च भी परम दिव्य समागत वापस गया सोधाम अपने धाम को। ट्रांसलेशन एंड पर्पोर्ट डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की ट्रांसलेशन। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संसार का भार कम करने के लिए पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव उत्पन्न किया। उन्होंने अपनी चितवन मात्र से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारे आसुरी राजाओं का संहार कर दिया और अर्जुन को विजय घोषित किया। अंत में वो दिव्य जीवन तथा भक्ति के विषय में उपदेश देकर अपने आदि रूप में अपने धाम को वापस चले गए। तात्पर्य परित्राणायं साधुनं विनाशाय च दुष्कृतम्। कृष्ण का कार्य कुरुक्षेत्र की युद्धस्थली में पूरा हुआ क्योंकि भगवान की कृपा से अर्जुन विजयी हुआ। यह उनका महान भक्त था और अन्य लोग भगवान की चितवन मात्र से मारे गए जिससे उनके सारे पाप कर्म धुल गए और वो सारूप्य को प्राप्त हुए। अंत में भगवान कृष्ण ने उद्धव को भक्ति के दिव्य जीवन का उपदेश दिया और समय आने पर वो अपने धाम लौट गए। भगवद गीता के रूप में भगवान के उपदेश ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण है। मनुष्य जीवन में ये दो बात सीख लेनी चाहिए कि भौतिक जगत से किस प्रकार विरक्त हुआ जाए और आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाए, यही भगवान का प्रयोजन है। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्। अपना कार्य समाप्त करने के बाद भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन लौट गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण शीर्षक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इसकी पूर्ति भुवनेश्वर उड़ीसा भारत में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना के अवसर पर हुई। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगना रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता शिविशाखानुतंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। सत्कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्णा। तो भागवत के ये जो नवम स्कंद प्रभुपाद जी के जो ये आज उसका पूर्णाहुति हुआ। गुरु गोविंद स्वामी महाराज जो भुवनेश्वर में उड़ीसा क्षेत्र में भुवनेश्वर एक छोटा सा जगह और वो छोटा जगह के भीतर और एक छोटा जगह प्रभुपाद जी ने उनको दिए थे, जो जगह में अनेक बहुत ही कष्ट की सामना करते हुए हे झोलेनेश्वर गोविंद स्वामी महाराज कृष्ण को वहाँ पर बुलाने के लिए अपने मन बुद्धि और शरीर के द्वारा अनेक परिश्रम किए थे और प्रभुपाद जी उनके पर प्रसन्न हुए थे। और प्रभुपाद जी ने भी अंतिम समय में ये भागवत की भागवत महायज्ञ का समापन गौर गोविंद स्वामी महाराज के वो क्षेत्र को चुने थे। ये शुद्ध भक्ति की एक गुह्य समागम है। तो एक शुद्ध भक्त के द्वारा आकर्षित होते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के प्रति इतने आकर्षित थे तो हर क्षण हर चीज़ों के प्रति छोटे से छोटे चीज़ों के प्रति प्रभुपाद जी ने श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री प्रभुपाद जी की तो प्रभुपाद जी ने ध्यान देते थे। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज ऐसे है कि प्रभुपाद जी के आश्रित बने। तो प्रभुपाद जी जब वहाँ पर रह रहे थे तो बड़े ही सीक्रेट बड़े ही जो कि और शिष्यों में से गौर गोविंद स्वामी महाराज के साथ जिस प्रकार का वार्तालाप करते थे तो बड़े ही रोमांचक बड़े ही एक आकर्षक था और दूसरों भक्तों के प्रति। तो कोई नहीं जान पाते थे और उसके साथ जब बात करते तो बीच बीचों में खुला खुला में बात करते थे, लेकिन गौर गोविंद स्वामी महाराज के साथ जब प्रभुपाद जी बात करते थे तो ऐसे उनका बातचीत एक साक्षात वैकुंठ को उतार देता था। भगवत धाम वहाँ पर जैसे ऐसे तो जहाँ पर शुद्ध भक्त होते हैं वहाँ धाम बनता है। तो ऐसे गौर गोविंद स्वामी महाराज के ये क्षेत्र के परिसर के भीतर प्रभुपाद जी ने इन नवम स्कंद के जो भगवान की कथा को वो समाप्त किए थे। तो आज ये नवम स्कंद का पूर्ण हुआ और हमारा हृदय रूपी गर्भगृह में कृष्ण जन्म लेंगे, हमें दशम स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो भगवान के और भगवान श्री कृष्ण जब संसार में प्रकट होते हैं, खासकर भक्तों के हृदय में जन्म लेते हैं, भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं और भगवान श्री कृष्ण जब संसार में आते हैं तो असुर लोग ये देख करके डर जाते हैं, खास करके जो लोग नास्तिक होते हैं और असुर होते हैं, भगवान का प्रकट को देखकर वो डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान भी कहते हैं मेरा वासस्थान कहाँ है, ना मेरे भक्तों के हृदय, भक्तों के हृदय जो है मेरे निवास स्थान है। और इसीलिए भगवान भक्तों के हृदय में रहने से भक्तों की जो हृदय है वो धाम बन जाता है, वैकुंठ बन जाता है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान है तिष्ठति है, लेकिन जब कोई उनको प्रेम करने लगता है तब भगवान वहां पर प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। भगवान हृदय में है लेकिन कोई जीव जब उनको प्रेम करने लगता है तब भगवान उनके हृदय में आविर्भाव होते हैं। और आज को भी भगवान श्री भागवत के प्रथम स्कंद के शुरुआत में बताया गया, संतोषेन गदाभृत तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थाणि, भक्तों के हृदय में भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट हैं। और ऐसे हृदय में लेकर के चलने वाला, ऐसे हृदय में लेकर चलने वाला शुद्ध भक्त को चलंती तीर्थ कहा जाता है, वो चलता फिरता तीर्थ है। तो ये शुद्ध भक्त जहाँ पर पहुँचता है सारे अशुभ सारे अमंगल सारे अशुभ वहाँ से दूर हो जाता है। जैसे कई सालों से एक एक कमरा के भीतर बिजली न हो, लेकिन जैसे कनेक्शन करके वो कमरा के भीतर बिजली ला देते हैं, बिजली आने मात्र से ही वो कई सालों से ये घर अंधेरा था, वहाँ पर कोई रोशनी नहीं था, जैसे कनेक्शन के द्वारा बिजली घर में प्रवेश किया जाता है तुरंत घर के भीतर प्रकाश आ जाती है। ऐसा नहीं कि वो कमरा नहीं कह सकता कि मैं कई सालों से तो अंधेरा था, मैं अंधेरा ही रहूंगा, नहीं, जैसे ही आलोक बिजली आती है तुरंत उसके भीतर अंधेरा अपने छाए दूर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार शुद्ध भक्त जहाँ पर पहुँचते हैं तो अपने उनके उपस्थिति मात्र से सारे अशुभ सारे अमंगल उनके उपस्थिति मात्र से दूर हो जाती है। इसीलिए तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थाणि, तो यहाँ पर प्रश्न होती है ऐसे तो तीर्थ है लेकिन कुर्वन्ति वो फिर और तीर्थ कैसे करते हैं, कि सारे संसार के पाप से तीर्थ जब बुझेली हो जाती है, बोझ भारी हो जाता है, केवल वो तीर्थ में जैसे शुद्ध भक्त पहुंचता है तो उनके वहां पर पहुंचने मात्र से उस तीर्थ को भी बना देता है। पहले तीर्थ संसार के बोझ से वो भारी हो जाता है लेकिन जैसे शुद्ध भक्त वहां पर पहुंचता है तो उनके उपस्थिति से फिर वो उनका पुनः मूल स्थिति में आ जाता है। इसलिए एक बार नारद जी प्रश्न किए भगवान को कि आप कहाँ रहते हो, आपका वासस्थान निवास स्थान कहाँ है। तो उसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण बताए थे कि जहाँ पर मेरा भक्त मेरा कीर्ति को गाता है, मेरा गुण का बखानता है, वहीं पर मैं हूँ, वहीं पर मैं अटक जाता हूँ, यहीं पर मैं रुक जाता हूँ। जत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ पर मेरा भक्त मेरा कथा को कहता है, मेरा गाथा को गाता है, तो वहीं पर मैं रह जाता हूँ। तत्र तिष्ठति नारद, मैं योगियों के हृदय में या वैकुंठ में नहीं रहता, तो कहाँ रहता हूँ, मेरे भक्त के पास, जहाँ पर मेरा भक्त होता है वहीं पर मैं रहता हूँ। तो ये नवम स्कंद तक हमें देखेंगे माया के साथ हमारा एक तमूल युद्ध हुआ। ये हुआ, ये उसका पतन हुआ, उसके पतन हुआ, तो ये मात्र निमित्त मात्र है। पतन होता है बद्ध जीव का, मुक्त जीव का नहीं, और भागवत में सब मुक्त है तो वह मुक्त का कोई पतन नहीं होता है। तो ये जो भागवत में नवम स्कंद तक हमें देखें कि इसका पतन हुआ, इसका ये हुआ, इसका चरित्र का स्खलन हुआ, तो ये माया का साथ हमें एक प्रकार का माया का सामना करने के लिए एक प्रकार का चेतावनी दिया जा रहा है, एक प्रकार का ज्ञान नवम स्कंद तक हमें मिलती है। और अंतिम में हमें देखते हैं कि माया का भी बध हो चुका है, मतलब हम दशम स्कंद में प्रवेश करेंगे, मतलब दशम स्कंद में भगवान का लीला में वो प्रवेश कर सकता है जिन्होंने संपूर्ण रूप से माया से मुक्त है। भगवान के लीला में वो प्रवेश करता है जो संपूर्ण रूप से माया से मुक्त होता है, वो ही भगवान की लीला में प्रवेश कर सकता है। और हमारे हृदय में अनेक सारे शत्रु हैं। हम देखें ये जो नवम स्कंद तक हमें भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुने, तो हमारे हृदय में जो असुर है ये कथा के द्वारा बद मारा गया। हमारे हृदय में जो असुर है क्या है, न काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सब असुर है। ये असुर सब, असुर तो दूर की बात है, ये असुर सब हमारे हृदय में है। और ये असुरों को बध करना है कैसे, न कृष्ण कथा के द्वारा। और ये कृष्ण कथा के द्वारा अभी असुर मर चुके हैं, अभी कृष्ण हमारे हृदय में आएंगे। गौर सुंदर थोड़े दिन के बाद हमें गौर सुंदर का प्रकट महामहोत्सव मनाएंगे। गौर सुंदर हृदय में आने के पहले भगवान श्री कृष्ण आ गए, मतलब दशम स्कंद में प्रवेश करना है, मतलब पहले भगवान श्री कृष्ण आ गए बाद में गौर सुंदर जी आएंगे। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे जैसे स्मशान रूपी हृदय, मरुभूमि जो हृदय में भगवान नहीं होते हैं, स्मशान के भांति है, अमरा हुआ हृदय है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसे स्मशान में भी राधा रास बिहारी खड़े हो जाते हैं, राधा रास बिहारी जी वहां पर प्रतिष्ठित होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद जी की कृपा से हमारा स्मशान रूपी हृदय में कृष्ण आते हैं। हाँ, तो ये था दशम स्कंद का, दशम स्कंद में जाने का एक प्रकार का तैयारी है। तो आज के श्लोकों में ये बताया जाता है, पृथ्वीस्तो ये गुरुभारम ख्यपन, पृथ्वी का भार को भगवान श्री कृष्ण दूर करने के लिए, जब पृथ्वी माता असुरों के उत्पात से, असुरों के उपद्रव से उत्पीड़ित होती है, तब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को असुरों के भारों से मुक्त करने के लिए इस संसार में प्रकट होते हैं। आप लोग पीछे स्कंदों में, पीछे भागों में आप लोग सुने होंगे, ये भौतिक संसार काम वासनामय है। भौतिक संसार क्या है, काम वासना के एक पहचान के रूप में बनाया गया है। ये भौतिक संसार में जो भी कोई आया है वो कामुक है, वो काम वासना से अपने को बचा नहीं सकता। तो उसी का पहले हमें सुने हैं, कश्यप जी के दीति के प्रभाव से जब कश्यप जी दो संतान को उत्पन्न किए, और दो संतान उस समय केवल दो संतान को उत्पन्न किए थे, और दो संतान ये दो असुर उस समय केवल दो असुर के उत्पन्न होने से सारे संसार में इतने असंतोष फैल गया था, सारे लोग इतने कष्ट में थे। केवल हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दो असुर जब दीति के काम वासना से प्रभावित होकर कश्यप जी जन्म दिए थे, फिर असमय से जब असमय में संतान उत्पन्न होते हैं तो वो निश्चित रूप से असुर बन जाते हैं। पहले समय में वैदिक विधि विधानों के द्वारा गर्भ संस्कार हुआ करता था, वर्तमान ये सब कोई ध्यान नहीं होती है। तो इसलिए वर्तमान प्रभुपाद जी बताते हैं, वर्तमान के समाज एक प्रकार का एनिमल सोसाइटी है, पशुओं की समाज है। पशु वो होता है जिनको भगवान का ज्ञान नहीं होता है। अब ठीक उसी तरह प्राय ये संसार में लोगों के भीतर भगवत ज्ञान नहीं होती है। तो जब तक हमें भगवान की ज्ञान नहीं होती है तो एक प्रकार का पशु जीवन है। तो और अभी तो असुरों की संख्या तो और बढ़ गई है, इसीलिए हर दिन हर मुहूर्त में उपद्रव दिखती है। तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण ये असुरों को भार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। बद्ध जीव का मृत्यु इंद्रिय तृप्ति से होती है। जब मनुष्य बनकर के इंद्रिय तृप्ति करता है तो पाप करता है, क्योंकि मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। शास्त्र में कहा गया है मनुष्य जीवन किसी लिए, ना भगवान को मिलने के लिए। भगवान को मिलने के लिए जो वस्तु प्रदान किया गया उनको आप उनको मिसयूज करोगे, गलत व्यवहार करोगे तो वो पाप होता है। जो वस्तु का हमें मिसयूज करते हैं वो निश्चित रूप से पाप होती है। तो मनुष्य शरीर में जब भगवान का भक्ति नहीं होती है तो वो पाप होती है। तो भगवान का उपदेश बद्ध जीव का मृत्यु जो इंद्रिय तृप्ति होती है तो वो क्यों होती है ना, वो भगवान का उपदेश को नहीं समझता है। भगवान उपदेश करते हैं, जय ही संस्पर्श जाप होगा दुख योन एवते। ये बहुत ही संसार की जो सुंदरता है ये क्या है न, सर्प के मस्तक मस्तक के ऊपर मणि जैसे, और सर्प का मस्तक से जैसे हमें मणि को लेने के लिए प्रयास करते हैं वो सर्प के द्वारा हमें मारे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भौतिक संसार की जो सुंदरता है ये भौतिक जगत की सुंदरता रूपी सर्प के, भौतिक जगत की जो सुंदरता है वो सर्प के मस्तक के ऊपर मणि के जैसे, और जैसे हमें भौतिक जगत सुंदरता के प्रति आकर्षित होते हैं तो ये भौतिक सुंदरता रूपी सर्प के द्वारा हमें मारे जाते हैं। आजकल के परिवार कल्याण के नाम पर वर्तमान के सरकार जिस प्रकार का आसुरी की कर्म कर रहे हैं, आप हर साल में जिस प्रकार का एवर्सन का जो रिपोर्ट आती है कि भ्रूण हत्या सबसे जघन्य पाप है और गो हत्या, और वर्तमान देखा जाए यही पाप ज्यादा होता है, गो हत्या भ्रूण हत्या ये सब ज्यादा होती है अभी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, और एक बार भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में एक बार एक डॉक्टर आए थे और वो एवर्सन का चीफ थे, और उनको देखा गया माँ के गर्भ में बच्चा प्रवेश करता है, और उनको जब गर्भपात किया जाता है और पहले उनको एक मशीन के द्वारा बच्चे को बाहर निकालते हैं, जब वो मशीन जाता है तो वो मशीन जाने मात्र से वो माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो मशीन के द्वारा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जैसे वो मशीन माँ के गर्भ में प्रवेश करता है वो बच्चा को मालूम पड़ जाता है, क्योंकि जो पुरुष के जो शक्ति है वो पहले से वो जीवंत है। जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है वो भी जीवंत रहता है, ऐसा नहीं कि वो कपिल देव के द्वारा ये महीना में ऐसा, तो पहले से वो चेतन वस्तु है। और भगवान भगवद्गीता में भी बतानते हैं मैं पुरुष के भीतर वीर्य के रूप में हूँ, और ये वीर्य कौन है, भगवान है। तो वीर्य जब गर्भ में जाता है तो वो चेतन रहता है, और उसको और जब बच्चा बन जाता है और जब अस्त्र प्रसार के द्वारा जो मशीन जाता करने के लिए जो मशीन जाता है, तो वो मशीन जब जाता है माँ के गर्भ में वो बच्चा को पता चल जाता है कि ये मशीन तीखा चाकू जो मेरे तरह आ रहा है मुझे काटने के लिए, वो बच्चा फड़कता रहता है माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा फड़कता रहता है और इधर उधर भटकता रहता है, भागता है ये कोने से इधर इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन वो मशीन उनको छोड़ता नहीं है और जबरदस्ती उनको पकड़ करके वहां पर उनको काट देता है, और माँ के गर्भ में वो बच्चे को बच्चा का बद्ध हो जाता है, तो बच्चा का और बाद में उनको टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला जाता है। तो अभी जो पुरुष और स्त्री है उनको यदि पूछा जाए यदि बच्चा आपके सामने होता तो क्या आपको काटते इस प्रकार का मारते, वही बच्चा तो अंदर है, वही बच्चा यदि जब बाहर आता है तो उनको आप मारते नहीं हो, लेकिन वही बच्चा जब वो अंदर है तो किस प्रकार, ये बहुत बड़ी पाप है। प्रभुपाद जी वास्तव में कहा है ये बहुत बड़ी पाप है। तो वर्तमान परिवार के कल्याण के नाम पर सरकार इतने उग्र कर्म कर रहे हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पात, जहां पर भगवान की भक्ति नहीं होती है वहां पर केवल उत्पात मचती है, वहां पर केवल उत्पात होती है, हमारे इंद्रियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, इंद्रियों के ऊपर कोई संयमता नहीं है। इसीलिए पूर्वतन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बार अपने प्रवचन अपने कथा में कहे थे कि साधु संतों की वाणी के प्रति अवहेला करने के कारण आज सारा मनुष्य समाज नर्क की ओर जा रही है। और प्रभुपाद जी भी एक बार ये बात को बताए थे, जब प्रभुपाद जी सारे संसार के लोगों को पापों से रोक देने के जा रहे थे और हमेशा उनको प्लेन में भागना होता था प्रभुपाद जी को, क्योंकि कलयुग में लोगों का मति सहज पाप में होती है, उनका बुद्धि पाप में बसी रहती है, वो छोटे छोटे कार्य के लिए हमेशा वो पाप में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को कलयुग के मनुष्य को पापों से रोक देने के लिए वो दौड़ते थे सारे संसार में, वो भागते थे, और इसीलिए उनको प्लेन में एयर में जाना होता था, और संवाददाता के जो रिपोर्टर होते थे वो प्रभुपाद जी को क्वेश्चन कर देते थे, ओ स्वामी जी आप स्वामी जी होकर के साधु होकर के इतने पैसा खर्च करके आप प्लेन में हमेशा जाते रहते हो आते रहते हो। तो उसके जवाब में प्रभुपाद जी कहें कि संसार के लोग इतने पाप करते हैं और पाप के नरक की ओर भागते हैं, और ये नरक में भागने वाले लोगों को पकड़ने के लिए उनके ये संसार के लोग पाप करके जितने अधिक गति में नरक और भाग रहे हैं, मैं ऐसे नरक में जाने वाले लोगों को पकड़ रखने के लिए मैं उससे अधिक गति में उनके पास पहुंचने के लिए प्लेन में भागता हूं। प्रभुपाद जी ऐसे बताते थे। तो मैं पिछले भी क्लास में बताया था कलयुग में पाप कहां पर रहती है, चार चीजों में, मेडिटेटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, ये चारों जगह में पाप रहते हैं। और जब एक पशु मांसाहार करता है तो उनको पाप नहीं लगता, लेकिन मनुष्य बनकर के जब मांसाहार करता है तो उनको पाप लगता है। और प्रकृति के नियम के अनुसार उनको फिर पशु शरीर में जाना होता है। जैसे कोई मनुष्य पशु को पाप नहीं होता है, पशु को पाप पुण्य नहीं होता है, लेकिन मनुष्य को पाप लगता है। और जब मनुष्य पाप करता है तो पाप के परिणाम स्वरूप उनको पशु जोनि में जाता है। और जैसे कोई जीव पशु शरीर में चला जाता है तो फिर वो भगवत भगवान को याद नहीं कर पाता है, पशु शरीर में भगवान का याद नहीं होती है। हाँ, ये भी प्रभुपाद जी ने बताया है। और अवैध संग, अवैध संग देखोगे पशु भी करता है, हाँ, लेकिन मनुष्य यदि करे पशु को नहीं लगेगा, लेकिन मनुष्य यदि करे उनको पाप लगेगा। और ये सारे पापों के हिसाब, क्योंकि आज के यही बात को मुख्य रूप में श्लोक में बताया गया, पृथ्वी पृथ्व्या सौ ये गंभीरं क्षेपण, पृथ्वी में जो पाप बढ़ जाती है, अधर्म का विनाश होती ना, अधर्म बढ़ जाती है और धर्म का विनाश होती है, तो भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं, यदा यदा धर्म से भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मन सृजाम्यम परित्राणाय साधुन विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। भगवान का वचन है, भगवान का नियम है, भगवान का नियम है, जब उनके बनाए हुए संसार में जब कोई अधर्म करता है तो नियम के अनुसार भगवान उनको वो जगह से हटा देते हैं। तो नियम का जो पालन नहीं हो करता है, और भगवान का नियम का उल्लंघन करना सबसे बड़ी पाप है। और ज्यादा पशुओं से आज मनुष्य भगवान का नियम को ज्यादा से ज्यादा उल्लंघन करता है। पशु भगवान का नियम को प्रकृति के नियम के अनुसार जो समय में जो करना है, जो समय क्या खाना है, वो अपने नियम पालन करता है, लेकिन मनुष्य मनुष्य भगवान का नियम को तोड़ दिया है। इसलिए कोई पशु पक्षियों के उत्पातों को नष्ट मतलब कंट्रोल करने के लिए भगवान प्रकट नहीं होते हैं। मनुष्य जब ज्यादा उत्पात मचाता है ना, मनुष्य जब अधर्मी बन जाता है ना, कि मनुष्य भगवान ने मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी बनाया, और श्रेष्ठ प्राणी होकर के जब गलत करता है तो फिर भगवान को प्रकट होना होता है। तो पशु कोई प्रकृति का नियम को नहीं तोड़ता, लेकिन मनुष्य प्रकृति का नियम को उल्लंघन करता। और प्रभुपाद जी बताते हैं प्रकृति का नियम को उल्लंघन करना सबसे बड़ी पाप है, भगवान का नियम को उल्लंघन करना ये सबसे बड़ी पाप है। तो जो नियम कानून है मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए नहीं। एक बार बाहर की बात है कि बाहर के लोग कुत्ते के शौकीन, कुत्ते के शौक होते हैं, घर में कुत्ते रखते हैं। तो एक व्यक्ति ने अपने घर में टाइगर जैसे दो कुत्ते रखे थे, और कुछ काम बस वो पड़ोसी के घर में चले गए, और जाते समय घर के दरवाजा खोल दिए थे और चले गए। ठीक उसी समय उनके जो निबर थे वो कुछ काम के लिए उनके घर में आ गए। और जब घर के भीतर जैसे ही घुसे, वो माता जी थी, और जैसे घुसे तो घर के भीतर जो दो कुत्ते थे वो खुले हुए थे, और दो कुत्ते वो माता जी को पकड़ लिए, एक कुत्ता गला को पकड़ लिया और एक कुत्ता उनका छाती को फाड़ दिया। तुरंत दो कुत्ते वो जो स्त्री थी उनको मार करके और घर के भीतर फुटबॉल जैसे खेल रहे हैं। तो ठीक उसी समय जो घर का ओनर थे, मालिक थे, वो जो काम अपने काम करके घर पे आके पहुंचे। जब घर पे आकर पहुंचे तो देखें तो ये दो कुत्ते इस प्रकार के डेड बॉडी को लेकर के खेल रहे हैं। जब कैश हुआ किसके ऊपर, घर के मालिक के ऊपर, कुत्तों के ऊपर नहीं, मारा कुत्ता ने, लेकिन कैश हुआ घर के मालिक के ऊपर। तो यहां से प्रमाण होता है पशुओं के लिए नियम कानून नहीं है, नियम कानून मनुष्य के, लेकिन ये नियम कानून को पशु नहीं तोड़ते, मनुष्य तोड़ता है। भागवत के पंचम स्कंद में बताया गया 88 प्रकार के नरक है, ये पाप करोगे ये होगा, ये पाप करोगे ये होगा, तो कई प्रकार नरक की बातें बताया गया। और ये नरक की बात जब सुने सुखदेव को ना परीक्षित महाराज वो एकदम डर करके उनके हृदय व्यथित हो गया, क्योंकि कलयुग में लोग प्राय पाप में होते हैं, पाप करते हैं। तो परीक्षित महाराज जब सुने कि लोग पाप करने के कारण से नरक जाते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर दिए, नाना उग्र यदन न यात, ये संसार के पापी लोगों को कैसे नरक में बचाएं, नरक न जाने दें, उनको नरक से रोक दें, उसका कुछ समाधान बताइए, उसका कुछ मार्ग कहिए, उनका कुछ व्यवस्था करिए। तो अपने शिष्यों का इस प्रकार का दर्द हृदय को देख करके, संसार के पापी जीवों के प्रति ये दया दर्द हृदय को देख करके, श्रील व्यासदेव जी ने पहले तो परीक्षित महाराज को कर्म मार्ग, उसके बाद ज्ञान मार्ग, उसके बाद योग मार्ग, ध्यान मार्ग, ये सारे मार्गों की बताए। लेकिन एक कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान, योग पद्धति के द्वारा एक मनुष्य अपने को पापों से रोक नहीं पाता, पापों से अपने को बचा नहीं पाता, ये एक भक्त होने के नाते परीक्षित महाराज को ये विषय अच्छी तरह से भलीभांति याद मालूम था, इसीलिए उनका हृदय में संतोष नहीं आया। वो कहा कि कर्म, ज्ञान, ध्यान, योग पद्धति के द्वारा देखा, बड़े बड़े योगियों का भी पतन हो जाता है, बड़े बड़े योगी लोग भी विश्वामित्र जैसे 60,000 साल तक आंख बंद कर करके ध्यान में बैठे हुए थे, लेकिन मैंने कहा कि फर्स्ट मात्र से, मैंने कहा कि आने मात्र से योग शक्ति काम पे नहीं आया, वो इंद्रिय तृप्ति से अपने को, अपने योग शक्ति के द्वारा अपने को बचा नहीं पाए। सौबरी मुनि आप देखते हो ऐसे उनके भीतर योग शक्ति थी, वो जल के भीतर बैठ करके ध्यान लगाए थे, जल के भीतर बैठ करके वो डर गए थे कि विश्वामित्र जी धरती पर बैठ करके योग कर रहे थे तो उनका पतन हुआ, यदि मैं ऐसे करूंगा मेरा पतन होगा, तो वो डर करके जल के भीतर जा करके ध्यान लगा रहे थे। जल के भीतर जा करके भी वो अपने को इंद्रिय तृप्ति इतने प्रबल होती है बद्ध जीव के भीतर, इतने आध्यात्मिक मार्ग में उठ जाने के बाद भी ये विपत्ति बना रहती है। जब तक हमें पूर्ण तरह से अपने को भगवत भक्ति में नहीं लाते हैं तब तक डर रहता ही है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज के हृदय में संतोष नहीं आ रहा था, तो इसीलिए उन्होंने नकार दिए, ये सारे प्रस्ताव को उन्होंने बाजू में रख दिए कि नहीं, ये मेरा मन को आंता नहीं है, ये मेरे मन को एक प्रकार का हिम्मत साहस नहीं देता है कि मैं अपने ये संसार से ये प्रक्रिया के द्वारा पापों से बचाऊं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, योग पद्धति के द्वारा पापों से वास्तविक रूप से बचा नहीं जा सकता। तर अपने शिष्य के हृदय के भीतर इस प्रकार का असंतोष को जब देखें, तब फिर श्री व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी ने भक्ति मार्गों को रखे। भक्ति ऐसे एक मार्ग है, उपाय है, जो संपूर्ण रूप से माया से, पापों से बद्ध जीव को बचा सकता है। तो वैष्णव जो होता है वो परे दुखे दुखी, अपने विषय में वो चिंतित नहीं रहता, वैष्णव के सामने अपनी निजी कर समस्या करके कुछ नहीं होती है, वो जो चिंतित रहता है, व्यस्त रहता है, विव्रत रहता है, वो बद्ध जीवों के प्रति, बद्ध जीवों का दुख देख करके। यही बात भी प्रह्लाद महाराज भगवान नरसिंह देव को भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं आपका भक्ति में होने के नाते, मैं आपके भक्ति में होने के कारण मेरे विषय में मैं विचलित नहीं हूँ, मैं इसीलिए शोक में हूँ, दुखी हूँ, ये संसार के बद्ध जीव माया सुख लेने के लिए, संसार के क्षणभंगुर सुख लेने के लिए इतने मतलब उन्माद प्राय है, इतने वो आगे है। जो लोगों को आपका भक्ति का ज्ञान नहीं है और ये संसार में बद्ध जीव इंद्र तृप्ति करने में इतने आगे है, तो उनको ये जीवन और आगामी अगले जीवन के विषय में आश्वस्त कर पाना मुश्किल है। देखिए प्रह्लाद महाराज तो ही कह रहे हैं, असाधारण भक्तों की तो बात छोड़िए, वर्तमान संसार के लोग इतने इंद्रिय तृप्ति करने में व्यस्त है, इतने रुचि उनके भीतर जम गई है, उत्पन्न हुई है, तो अनेक भगवान, स्वयं भगवान आने के बावजूद भी काला कृष्णदास के जैसे उनको रोक नहीं पाते, भगवान मार्ग बता देते हैं लेकिन किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते, कैसे बचना है वो उपाय दिखा सकते हैं लेकिन किसी को जबरदस्ती वो किसी को बचाते नहीं है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है, यदि भगवान हाँ भक्तों के बद्ध जीव के प्रति इतने दयालु है, तो क्यों वो अपने पूरे शक्ति को इस्तेमाल करके वो पापों से बद्ध जीव को नहीं बचाते। तो वहां पर भगवान कहते हैं कि स्वतः जीव जब तरफ आता है तो मैं मुझे एक प्रकार का खुशी होती है। कोई यदि स्वतः आपको प्रेम करे तो वो प्रेम में जिस प्रकार का एक आकर्षण है, कोई किसी को बाय फोर्स जबरदस्ती करके आप मुझे प्रेम करो, आप मुझे प्रेम करो, तो ये हाँ इसमें कुछ ये नहीं है। तो वो डर के मारे कोई कुछ कुछ मजबूर हो करके ये इस प्रकार का कर रहा है, इसमें कोई हाँ ये नहीं है। इसीलिए वही बात भी भगवान चाहते हैं, बद्ध जीव स्वतः मुझे प्रेम करे, बद्ध जीव स्वतः मेरे तरफ देखे, मेरे प्रति आकृष्ट हो। हाँ तो ये सारे शास्त्रों का उपदेश कुछ बद्ध जीव उठाए तो उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है। वर्तमान हम देखेंगे सारा संसार कृष्ण भाव अमृत का अभाव है। वर्तमान लोग इतने अज्ञान में पीड़ित है, तो उनको रोक पाना और भगवान के और ले आना बहुत कष्ट होती है। तो और आगे जाकर के ये जब परीक्षित महाराज की इस प्रकार का बातों को देखें, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बताते हैं उसका उपाय क्या है। न चेत यह अपचिति यथा अहंस कृत्य, जैसे हमें मनुष्य शरीर मिलता है, यदि हमें इसी जीवन में जो पाप होती है, और पाप कैसे करते हैं, क्रुयात मन उक्त पाणी भी, हमें पाप कैसे करते हैं मन में, शरीर में और वाणी में, ये तीन प्रकार द्वारा, ये तीन प्रकार के द्वारा हमें पाप करते हैं, मन उक्त पाणी भी। हाँ, और यदि हमें पाप हो जाता है तो पाप से यदि हमें इसी जन्म में अपने को प्रायश्चित करा नहीं लेते, ये पापों से यदि हमें इसी पापों का प्रायश्चित यदि इसी जन्म में नहीं करा लेते, तो फिर परवर्ती जीवन में उनको उनका दोगुना सजा भुगतना पड़ेगा। मनु संहिता के अनुसार बताया गया, यदि ये जन्म में यदि कोई व्यक्ति पाप करता तो वो पाप को यदि इसी जन्म में वो अपने को मुक्त नहीं करा लेता, जैसे एक मर्डरर है, खूनी है, या जज यदि इसी जन्म में उनको फांसी नहीं देता, तो मृत्यु के बाद उनको कई बार उनका हत्या होगा, कई बार उनको फांसी में चढ़ना होगा। इसीलिए पहले समय तो यदि कोई जघन्य पाप करता था उनको फांसी दे देते थे, ये मनु संहिता के अनुसार ये व्यवस्था निर्धारित किया गया था मनु जी के द्वारा। लेकिन वर्तमान समाज में नास्तिकता का बोलबाल होने के कारण, नास्तिक की संख्या बढ़ने के कारण ये फॉर्मूला को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जेल जाते हैं, आ जाते हैं, ये कुंजर सोचतेवत दृष्टवा श्रुतभ्यंग जानन अपि, यदि वो देखते हैं ये पाप है, यदि वो जानते हैं पाप है, फिर वो जानते हैं सुनते फिर पाप करते हैं। ये कैसे ना हस्ती स्नान के जैसे, हाथी नदी में जाती है और अच्छी तरह से स्नान करता है, और स्नान करके जैसे वो किनारे में आता है तो धूल को उठा करके अपने सारा शरीर में छिटक देता है, फिर सारा शरीर को गंदा कर देता है। ठीक उसी प्रकार देखा गया है, कुछ लोग ऐसे पाप करते हैं और वो पाप को कबूलने के लिए और जुर्माना देने के लिए वो अपने पुरोहित के पास जाते हैं और जुर्माना देते हैं, अपने पाप को कबूलते हैं, फिर आने के बाद वही सेम पाप फिर वो पाप करने लगते हैं। तो ये जो बातें हैं, बद्ध जीव का कितने भी आप दंड दो, कितने भी शास्ति दो, वो पाप करेगा जब तक उनको इंद्रिय भोगों से दूर रहने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। जब तक उनको इंद्रिय भोगों से दूर रहने का शिक्षण नहीं दिया जाता तब तक वो पाप करेगा ही करेगा, उनको बचा नहीं सकते। तो ये बातें श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के भीतर बताए हैं। ये मनुष्य जीवन जो मिला, अनेक जन्म अनेक संसार में भटकते ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और ये जो सारा संसार है समुद्र के जैसे, और ये शरीर कैसे एक नौका है, और विराट समुद्र के बीच में ये मनुष्य शरीर रूपी नौका इधर इतस्तत हो रही है, इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर, वो शरीर रूपी नौका, ये शरीर एक नौका है, और ये संसार एक बहुत बड़ा समुद्र है, और ये समुद्र के बीच में ये शरीर रूपी नौका हिल डुल रहा है। वो नौका को ये शरीर को कोई ज्ञान नहीं है कहां मुझे पहुंचना है, कहां मुझे जाना है, तो जिसको नहीं होता है पशु है। जब पशु को ज्ञान नहीं है मुझे कहां जाना है, पागल को ज्ञान नहीं है मुझे कहां जाना है, लेकिन उसी अवस्था में यदि मनुष्य रहे तो पागल कहां जाएगा या पशु कहां जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर रूपी नौका ये संसार रूपी समुद्र के बीचों बीचों में पड़ा हुआ है ना, उनको किनारे का ज्ञान नहीं है। लेकिन ये नौका में कभी जब कोई एक दक्ष कैप्टन एक्सपर्ट कैप्टन आकर के बैठ जाए तो आसानी से वो किनारे में एक शरीर रूपी नौका पहुंच जाएगा। तो कैप्टन कौन है, एक भक्त है, भगवान का भक्त जो है एक कैप्टन है। और ये भक्त को यदि हमें इस शरीर रूपी नौका में बैठा दें, आज चुपचाप हम बैठ जाएं नौका में, अपने बुद्धि हाँ ना लगाएं, तो वो आसानी से हाँ वो कैप्टन और शरीर रूपी नौका को किनारे में पहुंचा देगा। बस पदम, हाँ भले ये संसार रूपी समुद्र को पार करना बद्ध जीव के लिए बहुत दुष्कर है, आत्म साक्षात्कार ज्ञान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, किंतु किंतु ऐसे यदि हमें हाँ जगह में पहुंचते हैं तो वो आसानी से वो चीज को हमें प्राप्त कर लेते हैं। हाँ बस पदम, जैसे एक बछड़ा अपने खोल के द्वारा गड्ढा जब कर देता है और ये गड्ढा में जितना पानी रुकती है, अत भक्तों के लिए ये संसार रूपी समुद्र उतना ही बन जाता है जैसे जब वो भगवान और भगवान के भक्तों के शरण में चला जाता है। तो उसी प्रकार हमें देखें कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में भी बताएं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। भाग्यवान कौन है ना, जो भक्त है, और सब हतभागा है। श्रीमद भागवतम कहा है, प्रायण अल्पाय से कले स्मृगे जना मंद सुमंद मंतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। कलयुग में सब हतभागा है, भाग्यवान कौन है ना, जो भक्त है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अनेक अनेक ब्रह्मांडों में भटक ये बद्ध जीव भटकता रहता है, घूमता रहता है, हाँ शरीर बदलता रहता है। तो बद्ध जीव का ये दशा को देखकर जब गुरु और कृष्ण उनके पर कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं तब जाके उनका बद्धता मूलोत्पाटन हो जाती है, तब जाके उनका बद्धता खत्म होती है। जब तक गुरु और कृष्ण उनके पर बद्ध जीव के पर कृपा नहीं करते हैं तब तक वो बंधा हुआ रहता है, प्रकृति के गुणों के द्वारा वो जकड़ा जाता रहता है। हाँ लेकिन गुरु कृष्ण की कृपा जब होती है वो बद्ध जीवन से मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, हाँ गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। हाँ जब कृपा होती है, हाँ हमारे दान तीर्थ व्रत तपस्या जप तप ज्ञान ये साधना ये सब प्रक्रिया के द्वारा हम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कृपा नहीं होती है, कि भक्ति कृपा से टिकती है, भक्ति कृपा से चलती है। हाँ तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति का बीज, तब जाके ये बीज हाँ ये हृदय में उगती है, ये हृदय रूपी खेती में ये अंकुरित होती है और उनको हाँ जो पोषण देखापाल किया जाता है तो भी एक दिन वो इतने बढ़ जाता है ये भौतिक ब्रह्मांड को भेद करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में पहुंचती है। तो ये भक्ति लता को बढ़ाने के लिए बद्ध जीव का बद्धता को खंडन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और भगवान के जो प्रतिनिधि है ये संसार में आते हैं। लेकिन वो गुरु के उपदेश भगवान के उपदेश जब हमें नहीं सुनते असत संग से जब हमें अपने को नहीं बचाते हैं तो फिर हाँ हमारा कल्याण नहीं हो पाती है। बुढ़े मांस जो बुढ़े बंदर है ना, तो एक बार अपने आश्रित बंदरों को कहा कि देखो ये राजा के घर में मत रहो, ये भले ये राजा के घर से हमको अच्छे अच्छे मीठा फल मिला है खाने के लिए, लेकिन एक ही ना एक ही दिन ये राजा के द्वारा हमें मारे जाएंगे, क्योंकि राजा ने हाँ अपने बच्चों के लिए एक प्रकार एक मेंढा क्या होता है हिंदी में, उड़िया में मेंढा कहते हैं, हाँ बकरा जो भी है, तो और रखा था अपने बच्चों को खेलने के लिए। तो ये बकरे लोग रोज किचन में घुस जाते थे और किचन में जाकर के सब खा जाते थे। तो किचन के जो रुसैया होते थे तो वो हमेशा बकरे को भगाते थे। आज जब बुढ़ा बंदर देखा कि ये बकरे लोग हमेशा किचन में घुसते हैं और खाते खाते रहते हैं, तो ये किचन का जो रोसैया है उनको भगाता रहता है। तो एक दिन ऐसा आएगा तो चीड़ करके ये रोसैया जलता हुआ लकड़ा को लेकर के बकरे को पीटेगा, और जब जलता हुआ लकड़ा के द्वारा पीटेगा तो बकरे में जो लोम में आग लग जाएगा, और वे आग से अपने को बचाने के लिए बकरा दौड़ करके जहां पर घोड़े रहते हैं तो घोड़े के साला घोड़ेशाला में घुस जाएगा, और घोड़ेशाला में सूखे घास फूस है तो वहां पर आग लग जाएगा। हाँ, और ये आग के द्वारा घोड़े सब जल जाएंगे, और घोड़े जब जल जाएंगे तो घोड़ों का शरीर जब आग के द्वारा जल करके घाव हो जाता है तो घोड़ों का शरीर का घाव को ठीक करने के लिए बंदरों का चर्बी सबसे अच्छी दवाई है। और जब घोड़े जल जाएंगे तो राजा ने ये बंदरों को हम सबको मार करके हमारा चर्बी निकाल करके घोड़ों को ठीक करेगा। इसीलिए बूढ़ा बंदरों ने अपने छोटे बंदरों को उपदेश दिया, चलो ये विपत्ति आने के पहले ये राजा का महल राजा का दिया हुआ सुख छोड़ करके हमें जंगल में चले जाएंगे। लेकिन आप छोटे छोटे बंदरों ने ये बूढ़े मंकड़ों का बंदरों का बात नहीं सुने, अरे तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा बुद्धि काम नहीं करता है, इतने स्वादिष्ट फल मिलता है राजाओं के बच्चों के द्वारा, बंदर में ना जंगल में जाकर भटकते रहेंगे, कहाँ पर कड़वा कहाँ पर खट्टा फल मिलेगा, यहाँ पर मीठे मीठे फल मिलता है, तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आपका बात नहीं सुनेंगे। तो बूढ़े बंदरों ने सोचा मेरे वंश का विनाश देखने की अपेक्षा अपने को बचाने के लिए मैं ये साथ छोड़ करके मैं अकेले अकेले चले जाता हूँ। तो दुखी होकर के रोते रोते वो सारे छोटे बंदरों को छोड़ करके अकेले अकेले चले जाते हैं। तो बूढ़े बंदरों का जो मुंह से निकली हुई वाणी आखिर में एक दिन सत्य होती है, आग लग जाती है, घोड़े जो जल जाते हैं। तो वैद्य ने बताता है राजा को, राजा ये घोड़ों का घाव को ठीक करने के लिए बंदरों का चर्बी ठीक इलाज है। तो राजा ने आदेश दे देता है, सारे बंदरों को मारा जाते हैं। जब अपने आश्रित छोटे बंदरों का वध हो जाती है, मारा जाते हैं, तो ये बूढ़े बंदर एक दिन छुपे छुपे आकर के देखता है और रोता है। ठीक उसी प्रकार गुरु और कृष्ण ये संसार में आते हैं और वैद्य जी को उपदेश करते हैं, मान लो मेरा कहना सुन लो, लेकिन वैद्य जी दूसरी संग में असत संग में इतने अरे संसार में इतने पड़ा हुआ है तो गुरु और कृष्ण का उपदेश को नहीं सुनता है। तो फिर गुरु और कृष्ण गुरु क्या करते हैं, अपने आश्रितों का विनाश देखने के पहले वो अपने को अप्रकट करा लेते हैं, वो अपने आप अंतर ध्यान हो जाते हैं, मतलब वो संसार छोड़ अपने शिष्यों का विनाश देखने के पहले वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार में प्रकट होते हैं धर्म का विनाश, धर्म की स्थापन और अधर्म की विनाश करने के लिए। तो ये श्लोकों के द्वारा हमें यही शिक्षा लेंगे, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े होकर केवल दृष्टिपात से कौरव का आयु को हर लिए थे, केवल जो कौरव को देखने मात्र से ही कौरव का शक्ति क्षीण हो गया था, किंतु भक्तों को अर्जुन को श्रेय देने के लिए उनको इस प्रकार का एक बहुत बड़ा प्रहसन करना पड़ा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ये संसार में दशम स्कंद में एक प्रकार का लीला करके बद्ध जीव को आकृष्ट करते हैं। भगवान यदि ये संसार में आकर के लीला करते हैं उसके पीछे ये हेतु है बद्ध जीव को आकृष्ट करना। भगवान जब कुछ कार्य करते हैं उसके पीछे क्या ही हेतु रहता है, और धर्म की स्थापन करना, अधर्म की नाश करना, और भक्तों की आनंद को बढ़ाना, ये कई सारे बातों को रख करके भगवान श्री कृष्ण इस संसार में प्रकट होते हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है अगले दिन में हमें भगवान श्री कृष्ण के लीला में जाएंगे, और ये भगवान श्री कृष्ण की लीला में जाने के पहले हमारे हृदय को ऐसे तैयार बना लेना चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण हृदय में आकर के जन्म लें। तो भगवान जब जन्म लेते हैं कहाँ पे, ना अपने भक्तों के हृदय में, खाली देवकी वसुदेव जो भक्त थे हमें भी यहाँ पर भक्त भी आप 3 बजे से उठकर आकर यहाँ पर 10 बजे तक या 9 बजे तक यहाँ पर भगवान को प्राप्त करने के लिए कई तपस्या कर रहे हो। देवकी वसुदेव जो तपस्या किए थे आप लोग भी यहाँ पर तपस्या कर रहे हो, तो ये तपस्या परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण इस हृदय में जन्म लेंगे, तो हमें भी भगवान को ये हृदय में आने आने के लिए वेलकम करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की मेरा गौर प्रेमानंद। समय हो गया तो प्रश्न तो नहीं हो सकता है। हरे कृष्ण।